समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास है। खेल के मैदान पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेशमा तिवारी। नमस्कार रेशमा।
नमस्कार सरफिरोजी एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आई रेशमा तिवारी एंड माय को होस्ट सरफिरोजी हैव ब्रॉट फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। India and Greece reiterate their commitment to strengthen strategic partnership, review progress in various fields including trade, defense, shipping and connectivity.
भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की।
Two terrorists killed in an encounter in Anantnag district of Kashmir.
उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए।
In boxing, India's Krisha Verma clinches gold at Under 19 World Championships in Colorado, USA.
सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान दे लो, आसान है, इजी है, ऐप इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है, फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन, कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन कहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, डीएसी के कैंप वहाँ, कभी जाने की जरूरत कहाँ, EOPPW जहाँ, हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका।
And now, Sir Firozi, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So today, we'll talk about Govardhan Puja. Welcome to our special broadcast on Govardhan Puja, a cherished Hindu festival celebrated with great devotion and enthusiasm right after Diwali. Today, we'll dive into the essence and significance of Govardhan Puja, its legendary origins, and how it continues to inspire millions of devotees today. Govardhan Puja falls on the first lunar day of the bright fortnight in the Hindu month of Kartik, which follows the festival of lights, Diwali. This day is also celebrated as Annakoot, and on this auspicious day, devotees perform special puja. This festival is celebrated across India and even in Hindu communities around the world. Devotees worship Govardhan Hill, offering a wide variety of vegetarian dishes to Lord Krishna in gratitude for his protection and blessings. The essence of Govardhan Puja goes back to one of the most beloved stories of Lord Krishna's life, as recounted in the ancient text, the Bhagavad Puran. Krishna spent his early childhood in the beautiful land of Braj or Vrindavan, where he performed numerous divine and heroic acts. Among these, one of the most celebrated is the story of Krishna lifting Govardhan Hill.
जी बिल्कुल रेशमा, और अब हम अपने श्रोताओं को उसी समय में वापस लेकर जा रहे हैं जहां ब्रज में लोग भगवान इंद्र का सम्मान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार हैं, सुझाव देते हैं कि इंद्र की पूजा करने के बजाय ग्रामीणों को अपनी भक्ति गोवर्धन पर्वत को समर्पित करनी चाहिए, जो उन्हें खाना पानी और आश्रय देते हैं। जब ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इंद्र नाराज हो गए। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वे तब तक बारिश करें जब तक कि पूरा ब्रज डूब ना जाए। इस पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर छतरी की तरह रख लिया। 7 दिनों तक बारिश होने के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी।
To this day, Govardhan Puja symbolizes this beautiful bond between God and devotees, a reminder that when we take refuge in the divine, protection is always near. On this auspicious day, devotees honor the memory of this divine event by preparing an enormous offering of food, often in the shape of a mountain. This offering, called Giri Yajna or the Great Offering, represents the Govardhan Hill and is made up of countless varieties of food items symbolizing abundance, gratitude and devotion.
जी और प्रसाद को कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ी की मूर्ति के सामने रखा जाता है. इस अनुष्ठान के माध्यम से भक्त कृष्ण में अपने विश्वास को दिखाते हैं, उन्हें अपने रक्षक के रूप में मान्यता देते हैं.
गोवर्धन पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेरियस वेज अक्रॉस इंडिया. इन वृंदावन, द हार्ट ऑफ कृष्णास लाइफ एंड टीचिंग्स, द फेस्टिविटीज आर ग्रैंड एंड डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन. Temples recreate the event of Govardhan Hill with elaborate food displays and decorations. In other parts of India, devotees prepare and share sweets, curries and other vegetarian dishes as an offering to Krishna. Devotees start the day early with a holy bath. Then a cow dung hill is created and the devotees perform a parikrama around it by singing hymns and chants in praise of Lord Krishna. A feast is arranged which is offered to the deity and then shared among each other as prasad.
जी रेशमा, और माना जाता है कि इस तरह का अनुष्ठान समृद्धि, खुशी और स्वास्थ्य लाता है. और ये उत्सव भारत से परे भी फैला हुआ है. दुनिया भर के मंदिरों में लोग एकता और भक्ति की भावना को बढ़ाते हुए इस उत्सव को मनाते हैं.
एब्सोल्युटली सर फिरोजी, एंड नॉट ओनली दैट, गोवर्धन पूजा ऑल्सो ब्रिंग्स अ मैसेज ऑफ ह्यूमिलिटी.
जी,
थ्रू दिस लेजेंड वी सी दैट डिवाइन पावर डज नॉट सीक पर्सनल वर्शिप और रिकॉग्निशन, रादर इट एम्ब्रेस is love, kindness and shelter for all. In humbling Indra, Krishna taught that the true power of the divine lies not in ego but in humility and compassion.
और रेशमा, हमारे जीवन का सार या कहें कि निचोड़ यही है कि हम लोगों के साथ कितने विनम्र हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं. विनम्रता हमें सिखाती है कि हम अपने अहम को हमेशा ऊपर ना रखें, बल्कि कई बार आपको परिस्थितियों को देखते हुए झुकना भी चाहिए ताकि आपके आपसी रिश्तों में सौहार्द बना रहे. और गोवर्धन पूजा का दिन और इसके पीछे की कहानी हमें यही सिखाती है.
Yes, we hope this Govardhan Puja brings peace, protection and joy to each of you. May the spirit of Krishna's boundless love and protection fill our hearts and lives today and always.
और रेशमा, जैसा कि हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, तो दीपावली महापर्व का चौथा महत्वपूर्ण पर्व अन्नकूट होता है. रामनगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पर्व पर आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को आज 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए. प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जा रहा है. अन्नकूट महोत्सव की धार्मिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं झुनकी घाट के महंत श्री प्रभंजनानंद जी महाराज.
भगवान को प्रातः काल 3:30 बजे अभिषेक किया जाता है. वो 3.5 घंटे का अभिषेक होता है, मज्जन होता है, उसके पश्चात उनकी वैदिक परंपरा से पूजन अर्चन होती है, उसके पश्चात भगवान को सजाया जाता है, उसके बाद उनके समक्ष हम 56 भोग का भोग लगा करके उनसे निवेदन करते हैं कि ये 56 भोग नहीं बल्कि इन 56 व्यंजनों में हमारे भाव छुपे हुए हैं, हमारे भाव को आप ग्रहण करें.
अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु पंक्ति भक्त देखे जा रहे हैं. इस अवसर पर राम मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ है. परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी.
और अब समय है श्रोताओं की आपको लेकर चलें देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है.
Yes, in Assam, Agriculture Minister Atul Bora inaugurated the Elephant Safari for the current tourist season in Kaziranga National Park and Tiger Reserve on Friday. More from our correspondent.
The World Heritage Site Kaziranga National Park and Tiger Reserve attracts tourists from across the world due to its flora and fauna. Agriculture Minister Atul Bora inaugurated the Elephant Safari at Mihimuk under the Kohora Forest Range in the National Park on Friday. He also performed an elephant puja on the occasion. The national park reopened for the visitors on 1st October after the long spell of monsoon for the new tourist season. Last month, 28,980 tourists visited the national park, setting a new record. Compared to the previous year, the number of foreign tourists has already doubled this October. According to the park authority, it has already generated a good amount of revenue through jeep safaris. Currently, 10 elephants are engaged at Kohora and 35 elephants at the Bagori Forest Range for elephant safaris. On the inaugural day, many foreign tourists also undertook elephant safaris. Aminul Hokjuddar, Akashbani News, Guwahati.
The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, PMMSY, a transformative scheme for the fisheries sector and the welfare of fishermen under the aegis of the Ministry of Fisheries, aims to address critical gaps in fish production and productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure and management. It strengthens the value chain and it endeavors to establish a robust fisheries management framework and improving fishers' welfare. In Tiruchirappalli, which is a delta basin, freshwater fish culture is given more priority to focus on sustaining local fish stocks. More from our correspondent.
There's a proverb. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. To enrich fisheries resources, Union Government had launched the PM Matsya Sampada Yojana in 2020. Under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Municipal Administration Minister K.N. Nehru on Wednesday inaugurated the release of 4.5 lakh native freshwater fish fingerlings into the Kaveri River at Mukambu in Trichy on behalf of Tamil Nadu Fisheries and Fishermen Welfare Department. This project aims to increase native fish resources in the Kaveri and Kollidam rivers. Fingerlings of native species including Rogu, Katla, Mrigal, Chelkande and Kalbasu were first cultured at the Metu Government Fish Seed Production Center in Salem before being released into Kaveri River system in Trichy district. This initiative is focused on sustaining local fish stocks, protecting endangered native species and supporting the livelihoods of fishermen who rely on river fishing for livelihood. The sustainable restocking efforts will enhance the river's ecology and a catch assessment will be conducted with fishers in 6 months to evaluate the project's impact. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana aims to formalize the fisheries sector and support fisheries micro and small enterprises with an investment of over ₹6,000 crores over a period of 4 years from financial year 2023-24 to financial year 2026-27 in all states and union territories. The scheme was launched to strengthen the Blue Revolution Scheme. The initiative delves into the domain of inland fisheries and aquaculture, recognizing a pivotal role in bolstering production and ensuring robust food security. The scheme marked 4 years of its completion in September 2024. To mark the occasion, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy organized an event and launched other key initiatives for the development of the sector and the welfare of fishermen. The central government provides a self-sufficiency that ensures a reliable and consistent service which makes other countries have a higher vision on Indian fisheries. PM Matsya Sampada Yojana has revolutionized and rejuvenated inland fishing in India and will go a long way help livelihood of inland river fishermen. Shanti Ramesh for Parikrama from Agashwani, Tiruchirappalli.
The tourism department will soon undertake a survey of the homestays registered with it to examine whether they have facilities in place as per guidelines of the West Bengal government. The survey will be done by a competent agency identified through tender procedure. Recently, Home Secretary Nandini Chakrabarty, who is also the principal secretary of the department, chaired a meeting where the decision of the survey was taken. She said several homestays came up in different parts of the state over the last 7 years. The state government has provided financial assistance to them to promote homestay tourism. The survey is aimed at identifying whether they are maintaining standards of tourist amenities since the state government offers subsidies for setting up homestays. The survey is similar to an audit exercise. More from our correspondent.
In 2017, the state introduced homestay policy. The policy was revised in 2019 and again in 2022 after tourism was hit due to COVID pandemic. The state presently offers rupees 1 lakh for developing infrastructure of homestay facilities after they register with the state government. There are certain guidelines that these homestays are expected follow in respect of tourist amenities. Tourism department sources said till mid-September the total number of registered homestays across the state is 2,373. Kalimpong has 1,070 homestays followed by Darjeeling 310. There are 138 homestays in Jalpaiguri, 102 in Jhargram, 47 in Birbhum, 38 in Purulia to name a few. There are allegations of homestays not adhering to state guidelines. After booking, tourists have complained that they were denied the facilities promised during booking. The survey will be carried out on the basis of a list from the district magistrates. If homestays are found flouting the latest policy, action will be taken against them. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
और अब समय है जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत डिफेंस न्यूज कैप्सूल का, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार के प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ को दिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश।
भारतीय सेना के यंगेस्ट आर्म आर्मी एविएशन कोर ने कल अपना 39वां रेजिंग डे मनाया। इस अवसर पर हमने कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में।
धन्यवाद।
अगर बातचीत की शुरुआत करें तो अब तक की जो जर्नी रही है आर्मी एविएशन कोर की, उसके बारे में कृपया हमारे लिसनर्स को बताएं।
जी हाँ, आपने सही बोला। ये आर्मी एविएशन आर्मी की सिर्फ एक यंगेस्ट आर्म ही नहीं है बल्कि इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती हुई आर्म है। ये जर्नी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 8 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही। एयर ऑब्जर्वेशन फ्लाइट के तौर पर आर्मी ऑफिसर्स एविएशन में थे और इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिपेंडेंट आरएनओ यूनिट, उस समय एरोपी फ्लाइट रेज हुई थी। उसके बाद 1986 में पहली बार जब 62, 65 और 71 वॉर की जो लेसन्स के बाद जब ये महसूस हुआ कि आर्मी को एक अपना एक एविएशन आर्म होना चाहिए, तो फाइनली 1986 में आर्मी एविएशन कोर की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक की जर्नी जो है वो हमारे शुरुआती तौर से रेकी एंड ऑब्जर्व यूनिट्स से शुरुआत की, फिर हमने अपने बेड़े में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया और उसके बाद हमारे पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आए और अब हमारे आर्मी एविएशन में आरपीएस का भी इंडक्शन हो चुका है।
आर्मी एविएशन कोर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके बारे में अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
देखिए, जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं अपने फॉर्मेशंस और अपने यूनिट्स के साथ जो लड़ाई करते हैं, तो आर्मी एविएशन जो है उनका एक इंटीग्रल हिस्सा है। और शायद ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि आर्मी एविएशन के जो एविएटर्स हैं वो एक सोल्जर हैं और कमीशन होके जमीन पर जो कार्रवाई होती है उसको समझकर वो हमारे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते हैं और जिससे उनको और भी इंटीमेट तरीके से लड़ाई के मैदान में वो टास्क अपना पूरा कर सकते हैं।
आपके बेड़े में कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, चॉपर्स हैं, इसके बारे में कृपया बताएं।
देखिए, आर्मी एविएशन बेसिकली तीन तरह के जहाज हेलीकॉप्टर्स को यूज करता है, रेकी एंड ऑब्जर्वेशन, यूटिलिटी और कॉम्बैट, और इसके अलावा अभी हाल में ही रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आरपीएएस भी हमारे बेड़े में शामिल हुआ है। और जहां तक रेकी एंड सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स का सवाल है, ये शुरुआत में हम लोग पहले फिक्स विंग, ऑस्टर और कृषक फ्लाई करते थे, फिर 1969 के बाद हमारे इन यूनिट्स में पहली बार चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स आए। 60 और 70 के दशक के ये जहाज आज भी हम उड़ा रहे हैं। इन जहाजों का जो परफॉर्मेंस है वो खासकर हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही ज्यादा सक्षम है और इस वजह से एक तरह से ये उन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में हमारे जो चीता और अभी जो चीतल है ये एक तरह से लाइफलाइन है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में हमारे पास एचएल द्वारा बनाया गया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं और इस यूटिलिटी क्लास में भी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और जो जहाज हैं वो किस तरह से इसमें इंडक्ट हो। हमारी तीसरी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आर्मी एविएशन का, जो ALHWSI जो मतलब ALH का वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड वाला जो जहाज है वो हमने इंडक्ट किया है। एक तरह से बोला जाए तो हमारे आर्म को एक वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म और एक कॉम्बैट क्षमता जो इसने दी है वो हमें भरपूर दी है। और इसके तहत अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लाइट भी हमारे पास इंडक्ट हो गया है, ये भी HAL द्वारा ही बनाया गया है।
इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, क्या संदेश है आपका उन युवाओं को जो भारतीय सेना और खासकर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने की आकांक्षा रखते हैं?
पहला मैसेज तो उन लोगों के लिए जो शायद अभी आर्मी में सोच रहे हैं कि आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए तो ये मैसेज है कि आपके लिए आर्मी एविएशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्मी में भी हैं और एक हेलीकॉप्टर या RPA भी फ्लाई कर रहे हैं, तो आप एक तरह से सोल्जर भी हैं और एक पायलट भी हैं। आपका जो काम है वो पीस में और लड़ाई में ज्यादा फर्क नहीं है। आप मान के चलिए कि आप एक तरह से हमेशा ऑपरेशंस में ही हैं, तो ये एक मोटिवेशन होना चाहिए लोगों को आर्मी एविएशन ज्वाइन करने का।
आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
And now, Sir Firozi, let's take our listeners on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
It was on 2nd November 1929 that a conference of prominent national leaders, including Mahatma Gandhi, Madan Mohan Malviya, Sardar Patel and others, issued the Delhi Statement as a response to the declaration by Lord Irwin on October 31st, 1929. During this time, the Simon Commission was touring India and facing protests everywhere.
While Indians across the country unanimously boycotted the Simon Commission, there was opposition in London also against giving concessions to the Indians, and it was debated in the Parliament. The declaration by Irwin was an attempt to restore Indians' faith in the ultimate purpose of British policy. He persuaded the Indian National Congress's leadership to come to the Round Table Conference.
Gandhiji issued the Delhi Statement in an attempt to find a middle path for the ensuing issues. The main points of the declaration focused on adoption of a policy of general conciliation to induce a calmer atmosphere in the country, granting of general amnesty to political prisoners, and securing the representation of progressive political organizations. The statement also underlined that a more liberal spirit should be infused in the government of the country.
However, when Gandhiji met Irwin on 23rd November 1929, the Viceroy rejected the offers given in the Delhi Statement.
Today is the birth anniversary of renowned physician, social reformer and ardent propagator of science, education and research, Mahendralal Sarkar. He was born in Pekpara village of Howrah district in the Bengal province on the 2nd of November in 1833.
He was the founder of the first National Science Association of India, namely Indian Association for the Cultivation of Science, where Nobel laureate C.V. Raman and many other scientists started their scientific experiments. In a meeting of the Bengal branch of the British Medical Association, he proclaimed homeopathy to be superior to the Western medicine of the time, for which he was ostracized by the British doctors. However, he went on to become a leading homeopathic practitioner in India, and in the course of his career, treated several notable persons of those days, including the author Bankim Chandra Chattopadhyay, the ascetic Ramakrishna, and Maharaj of Tripura. Sarkar also supported women's education. He arranged for freedom fighter Sarala Devi Chaudhrani's attendance in the evening lectures at IACS so that she could pursue higher studies in physics.
Mahendralal Sarkar died on 23rd February 1904, but his legacy of reaching out to Indian citizens and popularizing science education and research has left an indelible mark on Indian society. We salute this great Indian and his love for the motherland.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की हलचल। भारत के कृषा वर्मा ने कल अमरीका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं चंचल चौधरी महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की रूबी वाइट से हार गई। पुरुष 75 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे राहुल कुंडू को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला 70 किलोग्राम वर्ग में आकांक्षा इंग्लैंड की लिली डीकिन से 4-1 से हार गई। इस हार के परिणाम स्वरूप आकांक्षा को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज ही पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। तो रेशमा, आज सबसे पहले किन्हें याद कर रहे हैं हम?
यस, वी रिमेम्बर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एन आयरिश प्लेराइट, क्रिटिक, polemicist and political activist who held a significant influence on Western theatre, culture and politics at the turn of the 20th century. He wrote more than 60 plays, with his most famous being Pygmalion, which served as the inspiration for the musical My Fair Lady. In fact, Shaw is the only person to have won both the Nobel Prize for Literature and an Oscar, which he won for the film version of Pygmalion. He died on November 2nd, 1950, at the age of 94.
आज सुहराब मोदी की पुण्यतिथि है। ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने हिंदी की प्रथम रंगीन फिल्मों में से एक झांसी की रानी बनाई। सुहराब मोदी ने सन 1935 में स्टेज फिल्म कंपनी की स्थापना की, जिसके तहत इन्होंने मिर्जा गालिब और पुकार जैसी फिल्मों का निर्माण किया। सन 1980 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज अनवर सरदार मलिक जी का जन्मदिन है, जिन्हें अनु मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय फिल्म संगीतकार और गायक हैं। अनु मलिक ने अपने करियर की शुरुआत साल 1977 में फिल्म हंटर वाली से की थी। इसके बाद इन्होंने हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। साल 1993 में अनु मलिक को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म बाजीगर से। बाजीगर का गाना ये काली काली आंखें उस समय बेहद हिट साबित हुआ।
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें।
ने अकेले हम अकेले तुम, विरासत, बॉर्डर, जानम समझा करो, मैं हूं ना और फिदा जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। इन्हें फिल्म बाजीगर और रिफ्यूजी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है।
एंड सिटकॉम फ्रेंड्स फेम रॉस केलर इज एक्चुअली द एक्टर डेविड श्विमर। It's his birthday today. Friends became one of the most popular television programs of all time, and so did Schwimmer. He was born in 1966. And Shahrukh Khan, who can forget the king of Bollywood? On 2nd November 1965, he was born. And he's one of the most successful actors in the world, one of the most popular actors in Bollywood history. Some of his most successful films include My Name is Khan, Chennai Express, Devdas, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Pardes, Deewana, Dar, Anjaam and Kabhi Haan Kabhi Na. His success in films led the Indian government to award him with पद्मश्री इन 2005।
शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 1988 में बतौर अभिनेता छोटे पर्दे के धारावाहिक फौजी में ये नजर आए। वर्ष 1991 में इन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां धारावाहिक सर्कस में काम करने का इन्हें मौका मिला। बाद में इन्हें फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शानदार अभिनय के दम पर उन्होंने दर्शकों का दिल जीता और इसी फिल्म के लिए शाहरुख को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला।
चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है।
And And in addition to acting, Khan owns the Kolkata Knight Riders and Indian Premier League cricket team.
और हालांकि शाहरुख खान को बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन रोमांटिक हीरो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में इन्हें एंटी हीरो की भूमिका निभाकर इन्होंने आलोचकों और दर्शकों की खूब प्रशंसा बटोरी। बाजीगर और डर में विलेन की भूमिका निभाई। बाजीगर ने शाहरुख खान को उनका पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार दिलाया। वहीं फिल्म डर के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। सरफिरोजी और रेशमा तिवारी को इजाजत दीजिए कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।